अरमान ने आकाश और सुमित को खास निर्देश दिए थे, अबीर सिंह राठौर के यहाँ आने का पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि कहीं नानी माँ की इस हालत के पीछे इन दोनों का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि दोनों पर ही अरमान को भरोसा नहीं था। आगे अब जल्दी ही अरमान सीधा नानी माँ का, सीधा आस्था के पास चला गया था और उसने देखा कि आस्था आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। वो समझ चुका था कि जरूर ये रश्मि के इंजेक्शन का ही असर है कि आस्था की आंखें बार बार भारी हो रहे थे, इसीलिए अरमान सीधा जाकर आस्था के पास बैठ गया था। उसकी आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थे, इनफैक्ट अरमान ही नहीं, बाकी सभी लोग रात भर जागते रहे, कभी थोड़ा बहुत सोते कभी जागते, इसी तरह से रात गुजर रहे थे। इस बीच अरमान सिंघानिया एक मिनट के लिए भी नहीं सोया था, पूरी रात वो आस्था को देखता रहा। आस्था किस तरह बार बार नींद में बेचैन होकर उठ जाती थी और फिर रोने लगती थी, क्योंकि नानी माँ का खून से लतपत चेहरा आस्था की आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। इस वक्त आस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी नानी माँ के साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है। रह रहकर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही अंधविश्वास जन्म ले रहा था कि उन्होंने गांव का रूल तोड़ा है, क्योंकि गांव में किसी को भी उसे पिशाच वाले पेड़ के पास जाने की इजाज़त नहीं थी। पिशाच वाले पेड़ के पास का इलाका तकरीबन कई सौ बेघा का था, आधे से ज्यादा गांव का हिस्सा पिशाच वाले पेड़ की तरफ ही आता था, उस पूरे इलाके में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। वो अरमान सोचता रहा कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया, और ऊपर से आस्था की हालत देखकर तो अरमान को खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी प्यारी खूबसूरत बीवी आस्था पर वो इतनी सी भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन आज तो उसकी आस्था खून के आंसू रो रही थी, तो ये बात उसे काफी ज्यादा बेचैन किए हुए थी। और वो पूरी रात कमरे में इधर उधर टहलता हुआ सोचने लगा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर से क्योंकि गांव में सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी नहीं थे जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार नानी माँ पर हमला किसने किया था। फिलहाल उसने अपने भरोसेमंद साथियों आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान को काम पर लगा दिया था। ध्रुव और आहान का दिमाग इस तरह की जासूसी में कुछ ज्यादा ही चलता था, भले ही वो दिखने में हमेशा कार्टून से बने रहते थे या फिर मौज मस्ती में रहते थे या एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, लेकिन वो दोनों कितने ज्यादा शार्प और तेज दिमाग के थे ये बात उनका पूरा ग्रुप अच्छी तरह से जानता था। वेल, ध्रुव और आहान ने अपने सिरे से गांव के लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया था, और आहान तो बिल्कुल फॉर्म में था, उसने गांव के जैसा ही वेशभूषा धारण किया हुआ था और बिल्कुल गांव की लैंग्वेज तू तड़ाक से वो बातें कर रहा था। ध्रुव का हालांकि उसकी इस तरह की बातें सुनकर हल्की हल्की हंसी भी आ रही थी, लेकिन उस वक्त सिचुएशन भी ऐसी थी कि दोनों ही बिल्कुल सीरियस होकर अपना काम कर रहे थे, साथ ही साथ पिशाच के पेड़ की कहानी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने यही काम किया और जॉगिंग करने के बहाने से अच्छी तरह से चारों तरफ से जितनी हो सकती थी उतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर ली थी, और उसके बाद वे जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गए थे। वहीं प्रियंका, जो कि नानी माँ से आशीर्वाद लेने के बहाने से वहां आई थी, उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि नानी माँ की इस वक्त क्या हालत है। वो तो आराम से मजे का ब्रेकफास्ट देखकर उसने तो फटाफट से खाना शुरू कर दिया था। दरअसल जब से वो सिंघानिया मेंशन से लौटकर आई थी तब से उसने पेट भरकर सही से खाना भी नहीं खाया था। उसे बहुत ज्यादा सदमा लगा था क्योंकि उसे सिंघानिया मेंशन में एक से एक पकवान खाने को मिला करते थे, लेकिन अब क्योंकि अरमान सिंघानिया के शेफ तो उनके साथ ही आए थे तो जब उन्होंने इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया तो प्रियंका खुद को रोक नहीं पाई और फटाफट से खाने लगी थी। वहीं उस वक्त अबीर सिंह राठौर केवल अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था। अरमान और अबीर इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, क्योंकि अबीर ने अरमान और आस्था से अपने रिलेशन ठीक कर लिए थे तो, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच कुछ तो था जो काफी ज्यादा वियर्ड था। तब अबीर अरमान की ओर देखकर बोला, मिस्टर सिंघानिया, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि आप भी यहाँ इस गांव में होंगे, मुझे तो प्रियंका ने बताया था कि उसकी नानी माँ गांव में चली गई है, तो मुझे लगा कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो बस इसीलिए प्रियंका को लेकर मैं यहाँ आ गया। अचानक नाश्ता करते हुए प्रियंका की नजर अविनाश पर पड़ी। अविनाश को वहां देखकर प्रियंका पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में अविनाश का एक अलग तरह का रुतबा था, एक अलग तरह का नाम और पहचान थी, और प्रियंका हमेशा से इंटरनेशनल लेवल के लोगों की सबसे ज्यादा खबरें पढ़ा करती थी, क्योंकि उसे शुरू से ही बाहरी विदेशी लोग बहुत ज्यादा पसंद थे। उसने सोच लिया था कि शादी के बाद वो भी विदेश जाकर शिफ्ट हो जाएगी और कभी भी लौटकर इंडिया नहीं आएगी, लेकिन अब अविनाश को अपने सामने देखकर प्रियंका की तो आंखें हैरानी से फैल गई थीं, और वो एक्साइटेड होकर तेज आवाज में बोली, ये तो मिस्टर अविनाश, अविनाश रघुवंशी है ना। जैसे ही प्रियंका ने ये कहा सब लोग प्रियंका की ओर देख रहे थे।
उन सबको ऐसा लग रहा था कि मानो वे किसी बेवकूफ को देख रहे हों, क्योंकि प्रियंका को देखकर इस बात के बारे में साफ पता चल रहा था कि अविनाश को वहां देखकर प्रियंका कितनी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और बहुत ज्यादा चमक थी। वहीं अविनाश प्रियंका के मुंह से अपना नाम सुनकर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया था और बोला, जी हाँ, मैं अविनाश रघुवंशी हूँ, क्या आप मुझे जानती हैं और आप कौन हैं? तभी अविनाश ने देखा कि आस्था सीढ़ियों पर से उतरते हुए नीचे आ रही थी। क्योंकि आस्था कल रात से सो नहीं पाई थी तो अरमान ने सबको ये सख्त निर्देश दे दिए थे कि कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आस्था की आंख खुली वो तुरंत नीचे आने लगी। वहीं अरमान ने देखा कि आस्था नीचे आ रही है तो अरमान तुरंत आस्था को सहारा देने के लिए जाने लगा, लेकिन अरमान के साथ साथ अविनाश भी तुरंत आस्था को सहारा देने के लिए पहुंच चुका था। एक तरफ से अरमान ने आस्था का हाथ पकड़ा हुआ था और एक तरफ से अविनाश ने। अब तो प्रियंका की आंखें ऐसी हो गई थी कि अभी इसी वक्त बाहर निकल जाएंगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका रोल मॉडल, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, यानी आस्था, उसके पास इस तरह से खड़ा हुआ होगा, उसे सहारा दे रहा होगा। वो तो पूरी तरह से चौंक गई थी। अब तो प्रियंका की जलन काफी हद तक बढ़ चुकी थी। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि एक तरफ अरमान और एक तरफ अविनाश दोनों ही आस्था के इतने करीब थे। तब प्रियंका अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और अपने हाथों की तालियां बजाते हुए आस्था की ओर देखकर ताना देते हुए बोली, अरे वाह आस्था, मानना पड़ेगा, तुम्हारा क्या देश के लोगों से मन नहीं भरा जो तुमने बाहर के विदेशी लोगों से भी रिश्ता बनाने शुरू कर दिए। उसका इशारा सीधे सीधे अविनाश से था। जैसे ही प्रियंका ने अविनाश को लेकर उसे सारी बातें बोली, आस्था की तो आंखें फटकी फटी रह गई थी। वो इतनी घटिया बात अपने और अपने भाई के लिए कभी भी नहीं सुन सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी जमीन खुद जाए और वो उसमें समा जाए। अब आस्था गुस्से से प्रियंका की तरफ बढ़ी। उसने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। जैसे ही प्रियंका ने ये सुना कि अविनाश आस्था का भाई है, उसे तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसे जलती हुई आग में फेंक दिया हो। वो सबको बारी बारी से देख रही थी। सभी लोगों की आंखों में प्रियंका के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी।
अब प्रियंका के लिए वहां खड़े रहना मुश्किल हो चुका था और वो पैर पटकते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई थी। वहीं अबीर सिंह राठौर भी इस बात के बारे में जानने के बाद कि अविनाश रघुवंशी आस्था का भाई है, वो पूरी तरह से नॉर्मल था। लेकिन फिलहाल उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो था अबीर सिंह राठौर की आंखों में जिसके लिए वो वहां आया था। वेल, अबीर सिंह राठौर अपने किसी खास मकसद की वजह से वहां आया था और इसके लिए उसे आस्था और अविनाश दोनों की ही जरूरत थी। वेल, उसका क्या मकसद था ये तो हमें आने वाला समय ही बताने वाला था। अब आस्था प्रियंका को लेकर अपना ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहती थी और वो रश्मि की ओर देखकर बोली, रश्मि दीदी, क्या हम नानी माँ से मिल सकते हैं? आखिरकार उन्हें होश कब तक आएगा? तब रश्मि बोली, आस्था पहले तुम कुछ खा लो, क्योंकि रश्मि को आस्था इस वक्त काफी ज्यादा मुरझाई हुई लग रही थी। तब आस्था जल्दी से बोली, नहीं रश्मि दीदी, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, मैं पहले नानी माँ से मिलना चाहती हूँ। तब रश्मि धीमी आवाज में बोली, ठीक है, आओ मेरे साथ। ऐसा बोलकर रश्मि जल्दी ही आस्था को नानी माँ के कमरे में ले गई थी। और जैसे ही आस्था ने नानी माँ को देखा, वो खुशी से रश्मि से लिपट गई, क्योंकि नानी माँ की आंखें खुली हुई थी। अब आस्था जल्दी से बोली, रश्मि दीदी, रश्मि दीदी, नानी माँ को होश आ गया और आपने हमें बताया भी नहीं, हम तो कब से नानी माँ के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। ये बोलकर आस्था रश्मि का ढेर सारा शुक्रिया अदा करने लगी थी। तब रश्मि का चेहरा एकदम इमोशनलेस था। वो आस्था को शांत करते हुए बोली, आस्था पहले तुम शांत हो जाओ, नानी माँ होश में नहीं आई हैं। जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आस्था हैरान हो गई और बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं, नानी माँ की आंखें तो खुली हुई हैं, तो भला वो होश में क्यों नहीं आई हैं? तब रश्मि बोली, नानी माँ इस वक्त कोमा में है, वो भले ही उनकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन अभी उनका शरीर उन्हें बोलने सोचने की शक्ति नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो कोमा में है। तब आस्था ने बड़े ही ध्यान से नानी माँ की ओर देखा। नानी माँ केवल एकटक सामने की ओर देखे जा रही थी, ना वो पलके झपका रही थी ना अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रही थी। अब आस्था क्योंकि मेडिकल लाइन में थी तो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि नानी माँ को क्या हुआ है। अब तो आस्था की आंखें एक बार फिर भर गई थी। तब रश्मि ने आस्था को दिलासा देते हुए कहा कि अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो नानी माँ का ख्याल कौन रखेगा। ठीक है, अब तुम्हें इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, हो सकता है नानी माँ को शाम तक होश आ जाए, कल तक आ जाए, दो दिन तक आ जाए या एक हफ्ते तक आ जाए। नॉर्मल इन केसेस में ज्यादा से ज्यादा बहुत कम टाइम में होश आ जाता है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आस्था इमोशनल होकर रश्मि का हाथ पकड़कर बोली थी, ऐसे कैसे हम परेशान ना हो रश्मि दीदी, आप नहीं जानती बचपन से लेकर आज तक नानी माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमें पाला पोसा, बुरी नजर से बचाया, इतना ही नहीं हमारा सपना पूरा करने में भी हमारी मदद की, लेकिन आज आज देखो हमारी बेचारी नानी माँ की हालत कैसी हो गई है, हमें बहुत रोना आ रहा है रश्मि दीदी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी नानी माँ को कैसे ठीक करें। हम अपनी नानी माँ को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। एक नई माँ ही तो है जो हमें हर मुसीबत से बचाती हैं, हमारे लिए सारे काम करती हैं। आप नहीं जानती, जब से नानी माँ की ऐसी हालत हुई है, हमेशा लगने लगा है मानो कि हमारी पूरी जिंदगी ही रुक सी गई हो। नानी माँ के बिना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है रश्मि दीदी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर आस्था ने जल्दी ही रश्मि को गले से लगा लिया था और रश्मि बड़े ही प्यार से आस्था के सर पर हाथ फेरते हुए बोली थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आस्था कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है। तुम तो बचपन से लेकर आज तक नानी माँ के साथ रह रही हो, तो तुम्हें उनसे इतनी ज्यादा लगाव है। लेकिन हम लोगों को तो कुछ ही दिन हुए हैं नानी माँ से मिले हुए, लेकिन फिर भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे शरीर का कोई प्यारा हिस्सा हमसे अलग हो गया हो। तुम नहीं जानती कि हमें भी इस वक्त कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, तुम देखना बहुत जल्दी नानी माँ ठीक हो जाएंगी और हम सबके बीच में फिर से हंसेंगी, बोलेंगी और खेलेंगी। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर रश्मि की भी आंखें भर आई थी और वो आस्था को सांत्वना देने लगी थी। रश्मि का साथ पाकर आस्था भी फूट फूट कर रोती थी। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोती रहीं। रश्मि ने आस्था को शांत करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि वो आस्था और उसके होने वाले बच्चे पर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आने देना चाहती थी। वेल, अभी वे लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी नीचे से रौनक की आवाज़ सुनाई दी। रौनक आस्था और रश्मि दोनों को ही चिल्लाकर आवाज़ लगा रही थी। तब दोनों हैरान हो गईं और तुरंत रौनक के पास जाने लगी थीं।